दोस्तों, मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों, नटखट बच्चों, प्यारी बहनों और भाइयों, मैं हूं आपकी मेजबान इरम इमरान और आप समाप्त फरमा रहे हैं इस वक्त रेडियो वेरितास की उर्दू सर्विस। दोस्तों, हमारी आवाज को दिल से कबूल करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्रामों को पसंद करने का बहुत शुक्रिया और जी हाँ, आपके प्यार भरे पैगाम अरसाल करने का भी शुक्रिया। सामईन, आज के प्रोग्राम सुनने से कबल समाप्त फरमा लीजिए हमारे पता जात। दोस्तों, अगर आप हमारे प्रोग्रामों को ऑनलाइन सुनना चाहते हैं तो विजिट कीजिए urdu.veritas-asia.org। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर हमारे साथ जुड़े हैं तो प्रोग्राम सुनिए और हमारा पेज भी जरूर लाइक कीजिए, जो कि है आरवी उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम सुनिए और जी हाँ, इसे लाइक करना और इन पर कमेंट करना हरगिज मत भूलिएगा। यूट्यूब पर हमारा चैनल है आरवी उर्दू सर्विस के नाम से। प्रोग्राम यूट्यूब पर भी आप सुन सकते हैं। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो हमारे दोस्त ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हैं, हमें आरवी उर्दू सर्विस से फॉलो कर सकते हैं और प्रोग्रामों से लुत्फंदोज हो सकते हैं। दोस्त, आज हफ्ता है और आज के रोज आप प्रोग्राम समाप्त फरमा सकेंगे नगमाए सहर और फन की दुनिया। दोस्त, आपको बताते चले कि ये प्रोग्राम फादर कैसे फिरोज की जेर निगरानी तैयार किए गए हैं, तो आइए समाप्त फरमाइए आज के प्रोग्राम।
हमारे खुदावन यीशु की अंजील मुकद्दस मरकत के मुताबिक उसका 9वां बाब 2 से 10 आयत तक, और उसकी पोशाक ऐसी दरख्शां और नहायत सफेद हो गई कि दुनिया में कोई कसार वैसी सफेद नहीं कर सकता, और इलियास मूसा के साथ उन्हें दिखाई दिया और वो यीशु से बातें करते थे, और पतरस ने यीशु से मुखातिब होकर कहा कि रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, और हम 3 डेरे बनाए, एक तेरे लिए और एक मूसा के लिए और एक इलियास के लिए, क्योंकि वो जानता न था कि क्या कहता है, इसलिए कि वो बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन पर साया कर लिया और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा बेटा है अल महबूब, इसकी सुनो। उन्होंने यकायक नजर दौड़ा कर सिवाय अकेले यीशु के और किसी को अपने साथ न देखा, और जब वो पहाड़ पर से उतरते थे तो उसने उन्हें मना किया कि जब तक इब्ने इंसान मुर्दों में से न जी उठे, जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। और वो उस कलाम को अपने पास अख्फा करके एक दूसरे से बहस करते थे कि मुर्दों में से जी उठने से क्या मराद है, और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि फकी कैसे कहते हैं कि इलियास का पहले आना जरूर है। और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि फकी कैसे कहते हैं कि इलियास का पहले आना जरूर है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज मोमिनीन, आज की तलावत में हमने सुना कि मसीह यीशु की सूरत बदल गई, उसकी सांस से बेशुमार नूर निकल रहा था, उसकी पोशाक की नौरानी हो गई थी, ऐसी सफेद कि दुनिया में कोई धोबी सफेद नहीं कर सकता। मसीह की पहली आमद के वक्त उसका जलाल सरसे में था, वो पस्ती की हालत में आया, वो मर्दे गमनाक और रंज का आशना था, मगर आमदे सानी के वक्त वो जलाल के साथ आएगा। उस वक्त किसी को उसके बारे में गलती नहीं लगेगी, सब देखेंगे कि वो बादशाहों का बादशाह और खुदाबंदों का खुदा है। एलिया और मूसा वहाँ पर थे, वो नुमाइंदगी करते हैं। एलिया पुराने अहदनामे के मुकद्दसीन की, शरीयत की, और मूसा नबियों की, और उन मुकद्दसीन की जो इस जहान फानी से कूच कर गए हैं। पतरस, यकूब और यूहन्ना वहाँ थे, आम लिहाज से वो नए अहदनामे के मुकद्दसीन की नुमाइंदगी करते हैं, या उन ईमानदारों की जो उस वक्त जिंदा होंगे जब मसीह की जाहरी बादशाही कायम की जाएगी। मसीह यीशु वहाँ मरकजी शख्सियत था, آسمان سے آنے والی آواز اور بادل نے پترس کی اس تجویز کو باطل ٹھہرایا کہ وہاں تین ڈیرے بنائے جائیں۔ ضرور ہے کہ ہر بات میں یسوع کا اول درجہ ہو، وہ ایمانویل کی مملکت کا جلال ہوگا۔ شاید وہ بادل شکینہ تھا، یعنی وہ بادل جو پرانے عہد نامے کے زمانے میں خیمہ اجتماع اور ہیکل میں پاک ترین مقام پر ٹھہرا تھا۔ وہ آواز تو خدا کی آواز تھی جس نے اعلان کیا کہ مسیح میرا پیارا ہوتا ہے۔
آداب سامعین، حاضر خدمت ہیں آپ کے میزبان عامر سہیل اور فرانسس زیویئر۔ پروگرام پیش خدمت ہے فن کی دنیا۔
سنائیے سامعین، کیسے حال احوال ہیں آپ کے؟ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے۔
سامعین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ماریا واسطی کے حوالے سے، جو کہتی ہیں کہ اگر چیلنجنگ کردار نہ ملے تو مجھے ڈپریشن ہوتا ہے۔
سامعین، ماریا واسطی ٹی وی کی معروف اداکارہ ہیں۔ پی ٹی وی سے سن 1990 کی دہائی میں اداکاری شروع کرنے کے بعد مسلسل کام کر رہی ہیں اور اپنے زیادہ تر کرداروں میں پاکستانی عورت کی ترجمانی کی ہے جو مشکلات کا سامنا کرتی ہے۔
سارا اور امارا، کبھی کبھی، بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ، بادلوں پر بسیرا، کالی آنکھیں، دھڑکن، احساس، عورت کا گھر کون سا، بری عورت، جلیبیاں، کچھ دل نے کہا، بارش کے آنسو، شیشے کا محل، رسوا، بہکاوا، محبت، خدا کی بستی، کل موہی، ملکہ عالیہ، میری لاڈلی تجھ پہ قربان، کچھ ان کہی باتیں، دیا چلے، خاندان، اے عشق ہمیں برباد نہ کر، لو کے لیے کتنی گرہیں باقی ہیں، تھوڑی دور ساتھ چلو، اور اس طرح کے بے شمار ڈرامے اور کلو جیسی ٹیلی فلمیں ان کے کریڈٹ پر ہیں۔ ماریا واسطی اتنا کام کرنے کے باوجود آج بھی اسی طرح تر و تازہ اور ڈائریکٹرز کی اولین ترجیح بنی ہوئی ہیں۔
سامن، ماریا واسطی ٹی وی اداکارہ نجمہ واسطی کی بیٹی ہیں۔ وہ اکثر اپنی والدہ کے ساتھ پی ٹی وی لاہور مرکز آیا کرتی تھیں، اور وہیں پروڈیوسر بختیار احمد نے انہیں لانگ پلے سارا اور امارا میں پہلی بار اداکاری کا موقع دیا، جس میں ریشم بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اس کے بعد پھر ماریا واسطی نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور اب تک سینکڑوں ڈراموں میں اداکاری کر چکی ہیں۔
ماریا واسطی کو اگر پی ٹی وی کی فنکارہ کہا جائے تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ پی ٹی وی پر انہیں ایوب خاور، قمر آفتاب، یاور حیات، بختیار احمد اور نصرت ٹھاکر جیسے ڈائریکٹرز کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو ڈرامے کی روح کو سمجھتے تھے۔ ماریا واسطی نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا اور آج پرائیویٹ پروڈکشن میں وہ ان کے کام آ رہا ہے۔ ماریا واسطی کا اس حوالے سے کہنا ہے कि मेरे कैरियर के इब्तदाई अय्याम में मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। वो डायरेक्टर अपने काम के माहिर थे, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। पहले डायरेक्टर एक एक चीज बताया करते थे, लेकिन आज के डायरेक्टर्स कुछ बताते ही नहीं हैं। मुझे मुश्किल और चैलेंजिंग किरदार अच्छे लगते हैं, लेकिन जब इस तरह के किरदार नहीं मिलते तो डिप्रेशन होने लगता है।
सामिन वो मजीद कहती हैं कि अब डायरेक्टर जज्बात की बजाय ग्लैमर पर ज्यादा जोर देते हैं। वो ड्रामों में बड़े बड़े घर दिखाते हैं, हालांकि पहले पीटीवी में सेट लगे होते थे, लेकिन कहानी और किरदार इतने मजबूत होते थे कि इन चीजों पर किसी का ध्यान नहीं जाता था। आज डायरेक्टर्स की सलाहियतों का मुझे अंदाजा है कि वो कहां तक लेकर जा सकते हैं। स्क्रिप्ट और फनकार के दरमियान एक जज्बा उभारना डायरेक्टर का काम है। हो सकता है चंद एक डायरेक्टर ऐसा भी कर रहे हों, लेकिन ज्यादातर नहीं कर रहे।
साथी मारिया वास्ती का अपने फनी कैरियर के हवाले से कहना है कि जब मैंने बानो कुदसिया का लिखा हुआ ड्रामा कल्लो किया तो उस वक्त से मेरे परस्तार मेरे साथ हैं। अब मैं जो भी किरदार अदा करती हूँ वो मुझसे वही मियार चाहते हैं जो कल्लो का था। वो कहती हैं कि मेरे ख्याल में किसी भी किरदार को मकबूल और कामयाब बनाने का कोई खुफिया फार्मूला नहीं है। जब आप कोई किरदार अदा करते हैं तो वो खुद ब खुद खुलता चला जाता है। आप अपने किरदार के बारे में जो कुछ सोचते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस के जरिए सामने आता है। आप ड्रामा देखने वालों को साथ लेकर चलते हैं, वो आपके साथ हंसना और रोना चाहते हैं।
कहती हैं कि आज के डायरेक्टर्स के हवाले से मेरे ख्याल में सरमद सुल्तान खोसट नई खेप में वाहिद डायरेक्टर हैं जिनमें पीटीवी के सुनहरी दौर की झलक देखी जा सकती है। उनके अलावा मजहर हुसैन के साथ भी काम करके उन्हें अच्छा लगा। मारिया वास्ती मजहर मोइन के साथ सराय घाट की फरजाना, बहकावा और कुछ अनकही सी बातें में काम कर चुकी हैं।
साथ ही मारिया वास्ती मजीद कहती हैं कि मैं एक हसास फनकारा हूँ जिसमें बहुत ज्यादा गहराई है, लेकिन इस गहराई को बाहर लाना डायरेक्टर्स का काम है। अगर किरदार की जरूरत हो तो मैं मेकअप भी नहीं करती, बल्कि सिर्फ पानी और साबुन से मुंह धो लेती हूँ। आज डायरेक्टर्स मियार की बजाय दिन में ज्यादा से ज्यादा सीन करने की कोशिश करते हैं, जिससे मियार यकीनन मुतासिर होता है। मुझे शोबिज में काम करते हुए इतना अरसा हो गया है और इस अरसे में मैंने सीखा है कि पढ़े लिखे अदाकार फर्क जरूर पैदा करते हैं। अब हमारा ड्रामा काफी हद तक कमर्शियल हो गया है। काम तो अब बहुत ज्यादा है, लेकिन मियारी काम बहुत कम हो रहा है। अदाकारी को एक बाकायदा काम के तौर पर संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। जहां तक ड्रामों के मौजूआत में यकसानियत का ताल्लुक है तो ड्रामा मुआशरे का अक्स होता है, और जो कुछ हमारे मुआशरे में होता है वही कुछ हमारे ड्रामों में दिखाया जाता है।
यकसानियत पैदा करने में हमारे टीवी चैनल्स का भी कसूर है, उनकी इतनी इजारादारी नहीं होनी चाहिए। यहाँ अगर कोई ड्रामे में तजुर्बात करता है या मामूल से हटकर तख्लीकी काम करता है तो चैनल्स इस ड्रामे को खरीदने से इनकार कर देते हैं। वो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स की मर्जी का नहीं बल्कि अपनी मर्जी का ड्रामा बनवाते हैं।
साथ ही वो कहती हैं कि अब प्रोड्यूसर्स एक खास किस्म के ड्रामे बनाने पर मजबूर हैं। मेरे पास बेशुमार आइडियाज हैं, लेकिन चैनल्स वाले वो ड्रामे खरीदने पर तैयार नहीं तो बताएं मैं भला क्यों वो ड्रामे बनाऊं? मैंने वो ड्रामे यूट्यूब पर तो नहीं चलाने, इन्हीं चैनल्स पर चलाने हैं। मारिया वास्ती का ड्रामा मलका आलिया हाल ही में खत्म हुआ है, जिसमें उन्होंने टाइटल रोल अदा किया था। इस ड्रामे की पहले सीजन में 50 से जायद और दूसरे सीजन में 80 से जायद किस्तें नशर हुई। इनके कई ड्रामे जेरे तकमील हैं, जिनमें एंजलीन मलक की ड्रामा सीरियल में वो एक वकील का किरदार अदा कर रही हैं। मारिया का कहना है कि मैं सिर्फ इस बात की कायल नहीं कि साल में एक ही ड्रामा किया जाए। मैं हर ड्रामे को इनकार नहीं करती, क्योंकि यहाँ एकेडमीज तो है नहीं, हम लोग सेट पर ही एक दूसरे को देख कर सीखते हैं। इसलिए आप जितना ज्यादा काम करते हैं उतना ही आप ग्रूम करते हैं।
वो कहती हैं कि बाज़ुकात अगर आप कोई गलत काम करते हैं तो इसमें भी आपके लिए सबक होता है, इसलिए मैं सीखने का अमल किसी सूरत भी रुकने नहीं देती। मारिया वास्ती का कहना है कि मुझे जब भी किसी ड्रामे का स्क्रिप्ट मिलता है तो मैं ये जरूर देखती हूँ कि इसमें मेरे लिए क्या चैलेंज है, मेरे साथ कौन से फनकार हैं और ड्रामा की कहानी क्या है, क्योंकि अगर आपके साथी फनकार अच्छे हैं तो आपको भी अच्छा काम करने का मौका मिलता है। जहां तक तुर्क और दीगर गैर मुल्की ड्रामों का ताल्लुक है तो उन पर भी दूसरी चीजों की तरह टैक्स लगना चाहिए। हमारे ड्रामे इनसे बहुत बेहतर हैं। अगर भारतीय न्यूज चैनल्स यहाँ नहीं दिखाए जाते तो टीवी चैनल्स पर भी पाबंदी होनी चाहिए। जिस तरह भारत से आने वाली दीगर मसनूआत पर टैक्स लगता है, इसी तरह वहाँ के ड्रामों पर भी टैक्स लगना चाहिए।
सामिन, इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, तो कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर हुए।
सामिन, ये रेडियो वेरिटास एशिया की उर्दू सर्विस है और आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रही हैं फन की दुनिया।
सामिन, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मारिया वास्ती के हवाले से, जिन्होंने एक तवील अरसे तक पाकिस्तान टेलीविजन की खिदमत की और अपने किरदारों से शोहरत पाई। दोस्त, मारिया वास्ती ने जो भी किरदार अदा किया वो देखने वालों के जहनों पर नक्श हो गया। मारिया वास्ती अपने काम से और अपने इस फन से इश्क की हद तक मोहब्बत करती हैं और कहती हैं कि जहां तक ड्रामे का ताल्लुक है तो यूं समझ लीजिए कि ये मेरा पहला इश्क है और मैं हमेशा ड्रामे को तरजीह देती हूं। बेशक मैंने फैशन के हवाले से भी बहुत काम किया, फैशन इंडस्ट्री में भी मैंने काम किया और मुख्तलिफ एड्स में भी काम किया, लेकिन ड्रामा मेरा हमेशा अव्वलीन तरजीह रहा और मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं कोई भी ऐसा किरदार अदा करूं जो कि देखने वालों के जहनों पर नक्श हो जाए और वो आइंदा बरसों में भी मुझे याद रखें। दोस्त, इसकी बेहतरीन मिसाल कल्लो ड्रामे में उनका बेहतरीन किरदार था, जिसमें उन्होंने एक ऐसी लड़की का किरदार अदा किया था जिसकी रंगत सांवली होती है और उसके वालिदैन उसकी वजह से बेपनाह परेशान होते हैं और परेशानी की वजह यह होती है कि उसके लिए कोई बेहतर रिश्ता नहीं आता। लेकिन मारिया वास्ती ने यह किरदार भी इस खूबी से सर अंजाम दिया कि देखने वाले जो हैं वो तारीफ किए बिना ना रह सके। दोस्त, अक्सर लोग या अक्सर अदाकार ऐसे होते हैं जिन्हें अपने परस्तारों की तरफ से तो पसीराई मिल जाती है, लेकिन डायरेक्टर्स जो हैं वो उनसे मुतमईन नहीं होते या डायरेक्टर्स उनके काम में कीड़े निकालते हैं। लेकिन सामिन, मारिया वास्ती ने जो भी किरदार अदा किया वो ना सिर्फ परस्तारों के जहनों पर नक्श हुआ बल्कि डायरेक्टर्स भी उनके काम से हमेशा मुतमईन नजर आए और यही वजह है कि आज भी वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की जरूरत बनी हुई है।
सामिन, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री के मुस्तकबिल के हवाले से मारिया वास्ती का कहना है कि इसे हम इंडस्ट्री नहीं कह सकते, क्योंकि चंद लोग ही सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनाते, अभी ये अपने पैरों पर भी इस तरह से खड़ी नहीं हुई। अगर हम अपने सिनेमाओं को बहाल करना चाहते हैं तो हमें अपनी फिल्में ज्यादा तादाद में बनाना होगी। खुशी की बात है कि अब ज्यादा लोग आगे आकर फिल्में बना रहे हैं, लेकिन हम जब तक बॉलीवुड, ईरानी या इराकी फिल्मों की नकाली नहीं छोड़ेंगे, अच्छी फिल्में नहीं बना सकेंगे। फिल्मों के मुकाबले में अगर हमारे ड्रामों की बात की जाए तो वो अच्छे हैं या बुरे, लेकिन वो हमारे तो हैं, इनमें हमारी सकाफत ही दिखाई जाती है, इसलिए वो पाकिस्तानी ड्रामे हैं।
दोस्त, मारिया वास्ती पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से कहती हैं कि एक तवील अरसे तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसे लोगों का राज रहा जिनका फिल्म या आर्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं था और उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक फिल्में बनवाई। फिर इस तरह की फिल्में बनाई जाने लगी जिनका पाकिस्तान के लोगों की हकीकी जिंदगी से करीब करीब भी कोई ताल्लुक नहीं था। वो साथ ही ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के अलावा अगर हम दूसरी फिल्म इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहां पर इंतहाई प्रोफेशनल लोग जो हैं वो इस फील्ड में आते हैं, वो अपने काम से प्यार करते हैं और अपने काम में महारत हासिल करते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहां पर जितने भी लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो किसी न किसी आर्ट एकेडमी से तरबियत हासिल कर चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। यहाँ पर जिसका जी चाहता है वो फिल्म बनाने की दौड़ में शामिल हो जाता है। इसके लिए महज चंद पैसे और कुछ ताल्लुकात की जरूरत होती है। जब तक प्रोफेशनल लोग पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सहारा नहीं देंगे, तब तक पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में क्या करने के लिए बाकी रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान में सिनेमाओं को लगातार तोड़ा जा रहा है और उनकी जगह प्लाजे कायम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अगर अच्छी फिल्म बनती है तो उसे लगाने के लिए कोई सिनेमा जो है वो नहीं मिलता। अगर हमें इंडस्ट्री को कायम रखना है और इसे सहारा देना है तो हमें नए सिनेमास को भी बनाना होगा, ताकि अगर हम ज्यादा फिल्में बनाते हैं तो फिल्में लगाने के लिए सिनेमे भी तो मौजूद हों। दोस्त मारिया वास्ती कहती हैं कि मेरा मुकाबला हमेशा खुद से ही होता है, मुझे अच्छे फनकारों के साथ काम करके मजा आता है। नए लोगों को सिर्फ खूबसूरती दिखाई देने की बजाय अपने काम पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए।
सामिन वो कहती हैं कि जब आप अपनी अदाकारी से किरदार में जान डालते हैं तो आप लोगों के दिलों पर अपने किरदार की मार्फत असर करते हैं। इस वक्त इस चीज की अहमियत नहीं होती कि आप स्क्रीन पर खूबसूरत दिखाई दे रही हैं या नहीं। मैंने ज्यादातर ऐसे किरदार किए हैं जिनमें मैं खूबसूरत दिखाई नहीं देती, लेकिन मेरे देखने वालों ने मेरी भी तारीफ की। यही वजह है कि इसके बावजूद मैं अब भी काम कर रही हूँ। मैं यहाँ ये जरूर कहूंगी कि नए लोगों, बिलखसूस लड़कियों को इससे सबक हासिल करना चाहिए।
मारिया वास्ती कहती हैं कि नए लोग जितने भी आ रहे हैं वो ग्लैमर को तरजीह देते हैं, लेकिन ड्रामा और अदाकारी में ग्लैमर से ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस जरूरी होती है, क्योंकि बास किरदार ऐसे भी होते हैं जो कि आपको अपनी खूबसूरती को छुपाकर अदा करने पड़ते हैं। दोस्तों कहती हैं कि आजकल अक्सर ड्रामे जब देखने का मौका मिलता है तो कोई एक घर की मुलाजमा बनाई गई होती है, लेकिन उसके कपड़े और लिबास देखकर ऐसा तासुर बिल्कुल नहीं मिलता कि वो घर की मुलाजमा होगी। वो कहती हैं कि जब मैंने कल्लो ड्रामे में काम किया तो मैंने अपनी शख्सियत के बिल्कुल बरक्स अदाकारी की और मैंने भरपूर कोशिश की कि मैं किरदार के तमाम जो पहलू हैं उनको पूरी तरह से निभा सकूं। यही वजह है कि आज तक वो किरदार लोगों के दिलों पर नक्श है। किसी भी अदाकार को अपनी शख्सियत भुलाकर किरदार की शख्सियत में ढलने की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक आप किरदार में नहीं ढलते आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, और अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो यकीनन आप लोगों की पसंदीदगी हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तानी ड्रामा जो है उसने अपने इंतहाई अरूज का दौर भी देखा है। उस वक्त अदाकारा हो या अदाकार हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देते थे और डायरेक्टर्स की कोशिश होती थी कि जितना ज्यादा बेहतर काम इन फनकारों से लिया जा सके वो लिया जाए, ताकि जो भी ड्रामा आखिर में बनकर सामने आए वो लोगों की पसंदीदगी जरूर हासिल करे।
सामिन, यहीं पर प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, हम थोड़ी ही देर में हाजिर होते हैं। सामिन, ये रेडियो वेरिटास एशिया की उर्दू सर्विस है और आप प्रोग्राम समाप्त फरमा रही हैं फन की दुनिया।
दोस्त, आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मारिया वास्ती के हवाले से, जिन्होंने तवील अरसे तक ड्रामों में काम किया और यूं समझिए कि पाकिस्तानी ड्रामे की शनाख्त बनी, क्योंकि बहुत सारे नामवर अदाकार जो हैं उन्होंने मारिया वास्ती के साथ काम किया और मारिया वास्ती ने जिस भी ड्रामे में काम किया वो ड्रामा जो है यकीनन लोगों ने पसंद भी किया। मारिया वास्ती की अपनी शख्सियत ऐसी है कि वो बहुत जल्द लोगों में घुल मिल जाती हैं और दूसरे लोगों के साथ हमेशा प्यार और सलूक के साथ पेश आती हैं। वो कहती हैं कि मैंने कभी अपने मुकाम या अपने किरदार के हवाले से या अपनी शख्सियत के हवाले से गरूर नहीं किया। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आजी और इनकसारी की जिंदगी गुजारूं। मैं अपने से जूनियर लोगों के साथ भी हमेशा बड़े प्यार और मोहब्बत से पेश आती हूँ, और अगर कोई मुझसे कुछ सीखने की तमन्ना रखता है या मुझसे कोई बात पूछता है तो इंतहाई प्यार और तहमुल से उसे बताने की कोशिश करती हूँ। वो कहती हैं कि पाकिस्तानी ड्रामा जो है वो पाकिस्तान की असल पहचान है, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामे में पाकिस्तान की सकाफत और तहजीब को नुमाया किया जाता है, और हमेशा यही कोशिश होनी चाहिए कि हम अपनी मशरकी रिवायात जो हैं उन्हीं को ड्रामे में दिखाने की कोशिश करें, ताकि ये लोगों के करीब तर हो और लोग इसे पसंद करें।
सामिन, मारिया वास्ती का कहना है कि फुर्सत के लम्हात में घर वालों के साथ वक्त गुजारना पसंद करती हूँ, और कहती हैं कि चूंकि पैदाइशी तौर पर मैं लाहौरन हूँ, इसलिए खाने पीने की बहुत शौकीन हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं खाती।
वो कहती हैं कि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर मुझे रास्ते में कोई चीज पसंद आ जाए, भले वो ठेले पर ही क्यों ना लगी हो, तो मैं गाड़ी रुकवा कर उसे लेना जरूर पसंद करती हूँ। वो कहती हैं कि पाकिस्तानी खाने जो हैं वो मेरी कमजोरी हैं, लेकिन मैं इतना ज्यादा नहीं खाती कि बहुत ज्यादा फरबा हो जाऊं। उनका कहना है कि लाहौर तो जाहिरी सी बात है अपने खानों की वजह से ही मशहूर है, और यहाँ के खाबे पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लोग दूर दूर से आते हैं, और जब लाहौर की सैर व सियाहत के लिए निकलते हैं तो खूबसूरत और मजेदार खाने उनको खुशामदीद कह रहे होते हैं। इसी तरह मारिया वास्ती का भी इन खानों से बहुत ज्यादा ताल्लुक रहा है। वो कहती हैं कि मैं अपने हाथ से भी खाने बना लेती हूँ, लेकिन मसरूफियत की वजह से अक्सर मैं घर में खाने बनाने से कासिर रहती हूँ, और जो घर में पका होता है वो जरूर खाती हूँ।
मारिया वास्ती का कहना है कि कभी हम भी शोबिज में नए थे, हमने सीनियर से बहुत कुछ सीखा था, बल्कि आज तक सीख रहे हैं, मगर नए लोग ऐसा नहीं करते। शायद वो समझते हैं कि वो घर से ही सीख कर आए हैं। हमारा सीनियर्स के साथ बहुत ज्यादा एहतराम, मोहब्बत और अकीदत का रिश्ता है, मगर अब वैसा नहीं है।
साथ ही वो कहती हैं कि किसी दौर में सिर्फ एक पीटीवी था, अब निजी चैनल्स की भरमार है और उनका पेट भरने के लिए ड्रामे भी ज्यादा बन रहे हैं। वो कहती हैं आज अगर किरदार पहले की तरह हिट नहीं हो रहे तो इसकी वजह कहानियां हैं, क्योंकि कहानियां रूह के बगैर लिखी जा रही हैं। दोस्त, ये तो थी मारिया वास्ती के हवाले से मालूमात, जिन्होंने टीवी ड्रामे के हवाले से बेपनाह शोहरत हासिल की और आज भी ड्रामों में काम कर रही हैं। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने मेजबान आमिर सुहेल और फ्रांसिस जेवियर को इजाजत दें।
करो